नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी उसे काफी असहज महसूस हुआ। उसने जयराज के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मिस्टर रणावत, मेरा हाथ छोड़िए। नंदिनी को काफी असहज महसूस हो रहा था। उसने अपना हाथ जयराज के हाथों से छुड़ाने की कोशिश की, तभी वहां रखा हुआ सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास जमीन पर गिर गया। ग्लास के गिरते ही कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर फैल गए। नंदिनी ने उन टूटे हुए कांच के टुकड़ों की ओर देखा। कांच के गिरकर टूटने से एक तेज आवाज हुई और ज्यादातर लोगों का ध्यान उसकी ओर गया, इसलिए जयराज ने भी दोबारा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो इधर उधर देखते हुए अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन नंदिनी घबराकर तुरंत ही वहां से दूसरी तरफ भाग गई। नंदिनी को लग रहा था कि कहीं जयराज फिर से उसके पीछे तो नहीं आ रहा है, इसलिए वो आगे चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। इसी वजह से वो सामने से आ रहे उदय से टकरा गई। उदय ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आराम से नंदिनी, आप इस तरह भागती हुई कहाँ जा रही हैं? क्या कोई आपके पीछे आ रहा है? इतना बोलते हुए उदय ने नंदिनी के पीछे झांक कर देखा तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। नंदिनी ने जैसे ही उदय को देखा उसने अपने आप को संभाला और अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी जल्दबाजी में थी, शायद मैंने आपको आते हुए नहीं देखा, आई एम सॉरी। उदय ने नंदिनी की घबराहट को महसूस किया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इट्स ओके, रिलैक्स, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी से बचकर भाग रही हैं। नंदिनी ने जैसे ही यह बात सुनी उसने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस उधर जा रहे थे। इतना बोलकर नंदिनी ने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा और अपने सामने की तरफ उंगली से इशारा करते हुए उसी तरह तेज कदमों से वहां से आगे चली गई। उदय को नंदिनी पर कुछ शक हुआ और वो पीछे की तरफ देखने लगा जहां से नंदिनी भागती हुई आ रही थी। वहां पर उसे जयराज के अलावा और कोई नजर नहीं आया। उदय ने अपनी भौहें से कोड़ते हुए कहा, ये मिस्टर रणावत यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उदय ने खुद से सवाल करते हुए जयराज की तरफ देखा, लेकिन उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया क्योंकि जयराज इस वक्त दूसरी तरफ देख रहा था। इंगेजमेंट का फंक्शन भी अब लगभग खत्म हो चुका था और राजवंश परिवार के सभी लोग वापस जा चुके थे। वहीं इप्सिता कपड़े चेंज करने के बाद अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपने मन में कहा, आज जिस तरह से अभिमन्यु ने हमारी मदद की और जिस तरह से हमें सहज महसूस करवा रहे थे, ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम उन्हें गलत समझ रहे थे। वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और देखो, हमने तो उन्हें थैंक यू तक नहीं बोला, उन्होंने हमारी इतनी मदद की, कम से कम हमें उन्हें थैंक्स तो बोलना ही चाहिए था। इप्सिता कहीं ना कहीं अभिमन्यु की मदद से काफी प्रभावित हो गई थी। वो अभिमन्यु के ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी नंदिनी कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर निकली। उसने अपना मुंह पोंछते हुए कहा, इशु, मैं सोच रही थी कि इसी शहर में थोड़ी दूर पर मेरी मौसी और मौसाजी रहते हैं, तो मैं उनसे जाकर कल मिल लेती हूँ, ठीक रहेगा ना? नंदिनी ये सारी बातें बोल रही थी लेकिन इप्सिता ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो अभिमन्यु में ही लगा हुआ था। इप्सिता को इस तरह सोच में डूबा देखकर नंदिनी उसके बगल में आकर बैठी और उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोली, क्या बात है मैडम, क्या सोच रही हो? इप्सिता ने जैसे ही नंदिनी की आवाज सुनी तो हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ नहीं कुछ नहीं। नंदिनी ने इप्सिता के सामने बैठे हुए कहा, कुछ नहीं सीरियसली? अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम कुछ नहीं सोच रही थी तो फिर मैंने अभी तुम्हें क्या कहा? इप्सिता ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमारा ध्यान कहीं और था इसलिए हमने सुना ही नहीं कि तुम क्या कह रही थी, अब बताओ तुमने क्या कहा? नंदिनी ने इप्सिता का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ भला तू मेरी बातों पर क्यों ध्यान देगी, तुझे तो मेरे जीजू के बारे में सोचने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है ना। इप्सिता ने नंदिनी की बात सुनकर उसके कंधे पर मारते हुए कहा, चुप करो तुम और कुछ भी मत बोला करो। इतना बोलकर इप्सिता शर्माने लगी और उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। तभी नंदिनी ने इप्सिता के चेहरे पर हाथ रखा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अच्छा अगर तू जीजू के बारे में नहीं सोच रही थी तो फिर मेरी इस बात पर इतना शर्मा क्यों रही है? इप्सिता ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार नंदिनी सच बताऊं तो अब मुझे लग रहा है कि उस दिन शायद हमने अभिमन्यु को कुछ गलत समझ लिया था, वो काफी अच्छे हैं। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल वो तो है ही, तूने नहीं देखा जब मैं उनकी फोटो खींच रही थी वो कितने हैंडसम लग रहे थे। यार इप्सिता तू पता करना, जीजू का कोई छोटा बड़ा भाई हो तो मुझे भी चल जाएगा या फिर कोई ऐसे ही राजघराने टाइप का। इप्सिता नंदिनी के हाथ पर मारते हुए बोली, कुछ भी मत बोला कर तू और मेरी बात ध्यान से सुन, पता है आज अभिमन्यु ने हमारी बहुत मदद की। नंदिनी ने इप्सिता की ये बात सुनकर उससे तुरंत पूछा, मदद की लेकिन कैसे? नंदिनी ने जैसे ही ये सवाल किया तो इप्सिता ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम तो बिजी हो गई थी इधर उधर और मेरे पास आकर एक बार भी तुमने नहीं पूछा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। तुम्हें पता है अगर अभिमन्यु मदद ना करते तो मेरी कितनी बेइज्जती होती सबके सामने। नंदिनी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, कैसी बेइज्जती और किस बारे में बात कर रही हो तुम, मुझे सब कुछ क्लियर बताओ। इप्सिता ने उसे पूरी बात समझाते हुए कहा, मेरे ब्लाउज का हुक खुल गया था और अभिमन्यु को पता नहीं ये बात कैसे पता चली और उन्होंने हमारी मदद की। वो वहाँ सबके सामने से हमें लेकर कमरे में आए और उन्होंने हमारी बेइज्जती होने से बचा लिया। इप्सिता की पूरी बात सुनते ही नंदिनी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओ शिट, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और तूने मुझे बताया ही नहीं। इप्सिता ने नंदिनी को घूरते हुए कहा, इतनी बार तो हम तुम्हें इशारे से सारी बातें बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम अपने ख्यालों से बाहर निकलो तब ना। नंदिनी ने इप्सिता से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सो सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी प्रॉब्लम में हो। इप्सिता ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा चलो छोड़ो अब ये सब, और ये तो कहो अच्छा हुआ अभिमन्यु ने हमारी इज्जत बचा ली। इप्सिता बोल ही रही थी कि तभी नंदिनी ने कहा, वैसे तूने जीजू को थैंक यू बोला या नहीं? इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसने तुरंत नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमें टाइम ही नहीं मिल पाया और सब लोगों के सामने कैसे बोलते, हमें थोड़ा असहज लगता। नंदिनी ने अपना सिर पीटते हुए कहा, ओ गॉड, उन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुमने उन्हें एक थैंक यू तक नहीं बोला, हाउ रूड यू आर। इप्सिता ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम भी यही सोच रहे थे कि हम अभिमन्यु को थैंक्स कैसे बोलें। नंदिनी ने उसका मोबाइल फोन उठाते हुए कहा, तेरे पास उनका नंबर है तो अभी उन्हें कॉल कर और थैंक यू बोल दे। इप्सिता ने नंदिनी को घूरते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो तुम, हमारे पास भला उनका नंबर कैसे होगा? नंदिनी ने काफी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या मतलब, कौन सी 18वीं सदी में हैं हम लोग कि जिससे शादी हो रही है अपने होने वाले पति का नंबर तक नहीं है तेरे पास? नंदिनी को इतना हैरान और परेशान देखकर इप्सिता ने बड़े ही आराम से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे यार, यहाँ पर ऐसे ही होता है और वैसे भी ये एक अरेंज मैरिज है और हम कल उनसे दोबारा ही मिले थे, तो ऐसे में नंबर कैसे हो सकता है हमारे पास उनका? इप्सिता ने ये बात ऐसे बोली जैसे कि उसके लिए ये बहुत ही सामान्य बात हो, जबकि शहर में नंदिनी जहाँ से संबंध रखती है वहाँ पर तो मुलाकात के बाद एक दूसरे के सोशल मीडिया आईडी और नंबर पहले ही मिल जाते हैं।
नंदिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब नहीं है वो नंबर तो क्या कर सकते हैं, लेकिन तू फिर एक काम कर, जीजू को सरप्राइज दे और कल उनसे जाकर मिल और उन्हें लंच पर लेकर जाकर थैंक्स बोल। इप्सिता ने जैसे ही नंदिनी का ये आइडिया सुना उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन क्या ऐसा करना ठीक होगा? नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, और वैसे भी तू किसी दूसरे इंसान से मिलने थोड़ी ना जा रही है, अब तो वो तेरे मंगेतर हो गए हैं और अपने मंगेतर से मिलने में क्या बुराई, अगर तू उनसे मिलने जाएगी तो उन्हें भी ऐसा लगेगा कि तू भी कुछ प्रयास कर रही है, तो हो सकता है वो भी खुलकर सामने आए और तुझे अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ बताएं। नंदिनी की ये बात सुनकर इप्सिता कुछ सोचने लगी और तभी नंदिनी ने कहा, सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी डिसाइड करो जो भी डिसाइड करना है। इप्सिता ने थोड़ा सोचकर कहा, आई थिंक तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम उनसे मिलने उनके घर तो नहीं जा सकते, तो फिर? इप्सिता की ये बात सुनकर नंदिनी ने अपनी भौहें की कोड़ते हुए कहा, तुम्हें उनका ऑफिस पता है? इप्सिता ने कहा, हाँ, हमें संजय अंकल ने बताया था, उन्हें पता होगा अभिमन्यु के ऑफिस का एड्रेस, और हाँ ये ठीक रहेगा, हम उनके ऑफिस जाते हैं। नंदिनी खुश होते हुए बोली, ग्रेट, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व, तुम कल दोपहर में ऑफिस जाओ, उन्हें सरप्राइज दो और उन्हें अपने साथ लंच पर लेकर जाओ और वहीं पर उन्हें थैंक यू भी बोल देना, और तुम दोनों एक दूसरे से अकेले में मिलोगी, बात करोगी, तो तुम्हारे बीच कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। नंदिनी की ये सलाह सुनकर इप्सिता ने भी धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और अपने मन ही मन ये सोचने लगी कि वो अभिमन्यु से मिलने जाने के लिए अपने घर वालों से परमिशन कैसे लेगी, वो भी अपनी सगाई के अगले ही दिन। क्रमशः